नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से भी तमाम सुनने वालों को नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। अभिषेक शर्मा आईसीसी रैंकिंग में T20 फॉर्मेट के विश्व के नंबर एक बल्लेबाज बने। लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और तरुण मनेपल्ली मकाऊ ओपन BFW सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे। और ड्यूरेंट कप में तरऊ FC ने निरोका FC के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ किया। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम की नजरें ये मुकाबला जीतकर श्रृंखला 2-2 से बराबर करने पर होंगी। एक रिपोर्ट।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम कल से शुरू होने जा रहे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए तैयार है। भारत फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से पीछे है, और टीम की नजर किसी भी हालत में ये मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ ये श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर समाप्त करने पर रहेगी। वहीं मेजबान टीम इस मैच को जीतकर या ड्रॉ कराकर श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। जसप्रीत बुमराह के आखिरी टेस्ट मैच खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। यदि बुमराह इस निर्णायक टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो भारतीय तेज गेंदबाजी क्रम की कमान मोहम्मद सिराज के कंधों पर होगी। अगर आकाश दीप फिट रहे तो वो भी उनका साथ दे सकते हैं। वहीं तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को डेब्यू का मौका मिल सकता है। कैनिंगटन ओवल की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। भारतीय टीम को बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और KL राहुल जैसे बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीद है। ऋषभ पंत चौथे टेस्ट में चोटिल हुए थे, उनके स्थान पर N जगदीशन को टीम में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरैल को मौका मिल सकता है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि इंग्लैंड के चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स और प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। मैच के दौरान बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। कैनिंगटन ओवल में भारतीय टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उसने सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। वहीं 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में भारत पुराना रिकॉर्ड भूलकर अपनी शानदार लय जारी रखते हुए ये मैच जीतना चाहेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 सामने रख दी है, और भारत के लिए खुशखबरियां आई हैं थोड़ी सी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे, और भारत के लिए चुनौती ये है कि बुमराह पे सस्पेंस लगातार बरकरार है, और कल लगता है जब तक प्लेइंग 11 सामने नहीं आती है तस्वीर तब तक स्पष्ट क्या होती है। क्या भारत तीसरे स्पिनर गेंदबाज के साथ जाएगा इस पिच पे?
देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड की बात कर लें। अभी जो रिपोर्ट हम सुन रहे थे, इंग्लैंड के कप्तान तो रूल्ड आउट हो गए हैं। ओली पोप इसमें कप्तानी करेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम में बॉलिंग लाइनअप में गस एटकिंसन है, जैमी ओबर्टन टन है और जॉश टंग है। तो ये 3 नए बॉलर आए हैं, फास्ट बॉलर। इसके अलावा जैकब बेथेल, जो कि बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, नंबर 6 पे उनको रखा हुआ है। तो काफी सारे परिवर्तन हैं। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर कोई नया प्लेयर आता है, हो सकता है नई ऊर्जा लेके आए, नया जोश के लेके आए और नए चुनौतियां नई पेश करे, नए ढंग से वो बॉल करेगा, उसको आपने खेला नहीं है सीरीज में इन बॉलर्स को, तो हो सकता है भारत के लिए बड़ी चुनौती हो। एट द सेम टाइम अगर भारत की तरफ की बात करें, तो हमने अभी रिपोर्ट में सुना, आपने भी ये सवाल किया कि जसप्रीत बुमराह को लेकर सस्पेंस है, लेकिन मेरा मानना है वो रूल्ड आउट हैं। जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेलने जा रहे हैं। कल ही ऐसी खबर आ गई थी वहां जो रिपोर्टर्स हैं उनके हवाले से कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो बीते टेस्ट मैच में उन्होंने एक ही इनिंग्स में बॉलिंग की, दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की, तो वर्कलोड थोड़ा कम था। लेकिन जो गैप है उसको देखते हुए, क्योंकि तुरंत 2-3 दिन के बाद टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो उनको नहीं खिलाया जाएगा। अब भारत के सामने यह है कि आकाशदीप फिट है, मोहम्मद सिराज तो खेलेंगे ही, प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। इसके अलावा जो एक 8वीं पोजिशन पे बात करें तो वहां पर एक वैकेंसी है, तो वहां या तो अर्शदीप सिंह खेलेंगे लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर होंगे, वो वैरायटी होगी एक, या फिर कुलदीप को मौका दिया जा सकता है। और भारतीय टीम अगर ये सोचती है कि बैटिंग को मजबूती दे तो शार्दुल ठाकुर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां एक सस्पेंस है। और विकेट कीपर की बात करें तो ध्रुव जुरेल खेलेंगे
जी, ध्रुव जुरेल की जगह यहां से बिल्कुल लगभग पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपिंग की भी ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में इस सीरीज में, कई दफा वो मैदान पे उतरे। जिस तरह की पिच बताई जा रही है रिपोर्ट्स के अनुसार कि इसमें स्पिनरों को मदद मिल सकती है, काफी हद तक ऐसी संभावनाएं हैं, तो शायद संभावनाएं हैं कि भारत कुलदीप के विकल्प के साथ जाए यहां पर।
देखिए स्पिनर ट्रेडिशनली अगर देखें तो ओवल की पिच पर स्पिनर्स ने ठीक ठाक विकेट निकाले हैं। यहां पर जो रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि जो शेन वॉन भी यहां बहुत सफल रहे हैं। भारत की बात करें तो जितने भी अब तक वहां टेस्ट मैच भारत ने खेले हैं जब से 30 से जब तक भारतीय टीम वहां गई है, जितने भी बॉलर्स भारत के गए हैं रविंद्र जडेजा सबसे सफल रहे
जी, बिल्कुल
3 मैच में 15 विकेट हैं। तो इसे पता लगता है कि हाँ वह विकेट कीपर जो स्पिनर है उनके लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि वो कैसी पिच बनाते हैं, क्योंकि अभी एक और अभी झगड़ा सामने आया था, तो विवाद वो क्यूरेटर से ही था। अब उसके बाद क्या कुछ होता है या घास छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो बॉलर आए हैं उनकी तरफ इंग्लैंड की तरफ मेजबान की टीम की तरफ, ये सारे फास्ट बॉलर हैं, लंबे कद के हैं, तो क्या पता वो स्पिन ट्रैक ना बनाए, वो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार पिच बनाए। लेकिन ओवरऑल जो ओवल का इतिहास देखें तो यहां पर एक बैलेंस पिच बनाते, बैटिंग भी अच्छी होती है वहां, ढेर सारे रन भी बनते हैं और फास्ट बॉलर्स भी अच्छा करते हैं और स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं, तो सबके लिए कुछ कुछ होगा। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद 3 स्पिनर्स के साथ भारत ना उतरे।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टंटिंग फैसला हो सकता है और पिच पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। वहीं एक और खबर की बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पे अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में ICC की ताजा जारी रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। और मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा विश्व के नंबर एक ऑलराउंडर तो बने हुए हैं, साथ ही बल्लेबाजी रैंकिंग में 5 पायदान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर और गेंदबाजी रैंकिंग में 1 स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर आ गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर्स की सूची में 8 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर, और अगर टेस्ट बल्लेबाजों की बात की जाए तो ऋषभ पंत 7वें, यशस्वी जायसवाल 8वें और शुभमन गिल 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और तरुण मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन BFW सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में रक्षिता रामराज भी दूसरे दौर में पहुंच गई और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो और पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्ण मूर्ति राय और साई प्रतीक भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन का मुकाबला आज था, वो भी जीते, आयुष शेट्टी भी जीते। थोड़ा सा निराशाजनक रहा कि अजस प्रणॉय से उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्नति हुड्डा की हार, आज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग।
ये दोनों देखिए बहुत ही अच्छे प्लेयर है, प्रणॉय के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो पीछे क्या कितनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, लेकिन चोट की वजह से हमारे कई सीनियर प्लेयर हाल फिलहाल बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। और वापसी करने के बाद एक स्टेटमेंट आया था एचएस प्रणॉय का कि जो आज के लड़के आ रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो 18 साल 19 साल, उससे मैच करना इतना आसान नहीं है, तो मुझे और अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। वो लगे हुए हैं और निराशाजनक तो है ही है। उन्नति हुड्डा जो काफी उभरती हुई प्लेयर है और भविष्य में उनसे काफी उम्मीदें हैं, उनका भी हारना निराशाजनक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो लक्ष्य सेन तो स्थापित हमारे प्लेयर है ही हैं, लेकिन 2-3 और जो नए प्लेयर हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आयुष शेट्टी अच्छा कर रहे हैं, और ये सब प्लेयर जो हैं वो 23 साल 24 साल 22 साल के हैं। ये भी एक अच्छा संकेत है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है, भले ही वो खिताब ना जीते बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच रहे हैं, सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं या प्री क्वार्टर पे पहुंच रहे हैं, तो ये अच्छी उपलब्धि भी कही जाएगी।
जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बैडमिंटन की इस साल की जो भारत की पूरी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो भारतीय खिलाड़ी, ऐसा आपने कहा है कि क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं, अच्छा खेल दिखाते हैं, अच्छी एनर्जी है, लेकिन एक तरफ अगर हम सात्विक की जोड़ी देख लें और चिराग शेट्टी, साल में उन्होंने 5 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे
जी,
लेकिन वो एक सेमीफाइनल और फाइनल या फिर जो खिताब का सूखा है वहां तक अप्रोच जो है थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है या फिर वहां तक की यात्रा थोड़ी सी मुश्किल हो जा रही है, इसके पीछे क्या तकनीकी कारण है?
ये देखिए, एक तो जो प्लेयर्स है, एक समय होता है आप देखेंगे जैसे मकाऊ ओपन ही चल रहा है, आप उसमें अगर सीडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे टॉप 10 जो प्लेयर हैं 7-8-9 वो नहीं उतरते हैं, जैसे ये जो लेवल है अलग अलग, ये सुपर 300 है, तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं वो सुपर 500, 750, 1000 वाले पर टारगेट करते हैं और पिक एंड चूज करते हैं कि हम इन इन टूर्नामेंट्स में खेलेंगे तो हमारी ये रैंकिंग अच्छी बनी रहेगी, हम टॉप में बने रहेंगे, और स्किप करते हैं. हमारे प्लेयर्स पीछे अगर हम देखें तो जो भी अगर सीजन शुरू हो रहा है तो टूर्नामेंट्स में उतरते जाते हैं एक के बाद एक, और हम उससे उम्मीदें भी करते हैं, हर दूसरे हफ्ते एक नया टूर्नामेंट है. तो होता क्या है कि उस पर इंजरी होती है, या तो उनके कंधे पे कोई इंजरी होगी या नी में इंजरी होगी, ज्यादातर टेनिस प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर में यही इसी तरह की इंजरी होती है. तो उसके उभर के आना और फिर जो गैप हुआ है उसको भरना आसान नहीं होता. जैसा प्रणय ने कहा, आप टॉप जोड़ी हुआ करती थी, देखे आपने उदाहरण दिया चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी का, उसमें उनका जो वो है तो वो एक समय नंबर वन थे और बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक की इंजरी हुई, दूसरे की इंजरी हुई, और फिर पता चला कि अब एक साथ तालमेल बिठाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आके, जिस तरह से प्रोफेशनल बैडमिंटन. बट मुझे उम्मीद है जो टैलेंट है भारतीय टीम में, आने वाले समय में हम फिर से देखेंगे कि एक के बाद एक टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ी जीत रहे हैं.
जी बिल्कुल, हमें इस बार भी उम्मीद होगी कि मकाऊ ओपन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कुछ और करिश्मा करके दिखाएं. और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की. विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता आज से ब्राजील में शुरू हो गई. ये प्रतियोगिता 3 अगस्त तक चलेगी. आइए जानते हैं कौन कौन भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में चुनौती पेश करते दिखेंगे.
पुरुष सिंगल्स में मानव ठक्कर, हरमित देसाई, मानु शाह, स्नेहित सुरवजुल्ला, पायस जैन और अंकुर भट्टाचार्जी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा, अहिका मुखर्जी, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े और स्वास्तिका घोष भारतीय दल का हिस्सा है. यदि पुरुष डबल्स की बात की जाए तो भारतीय चुनौती का दामोदर मानव ठक्कर और मानु शाह, पायस जैन और अंकुर भट्टाचार्जी तथा हरमित देसाई और स्नेहित सुरवजुल्ला की जोड़ी पर होगा. वहीं महिला डबल्स में दिया चिताले और यशस्वनी घोरपड़े की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में मानु शाह और दिया चिताले तथा हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े की जोड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी पेश करेंगी. वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन.
हालांकि इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने हर कैटेगरी में अच्छे से अच्छे नॉमिनेशंस पाए हैं, लेकिन सबसे अधिक उम्मीदें मेरे को लगता है मानव ठक्कर और मनिका बत्रा से होने वाली है.
जी बिल्कुल, देखिए जिस भी टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी उतरते हैं हम उससे उम्मीद करते हैं. इसमें भी कुछ यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, और एक हाल में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था शरत ने, जो हमारे शरत कमल अब तक के महान भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स में से एक है. तो उनका कहना था कि देखिए जूनियर लेवल पे तो हमारे प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि जूनियर से जो स्टार है वो सीनियर में भी स्टार बने और बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते. तो उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उम्मीद करें कि जो गैप है वो कहीं ना कहीं भरा जाए और जूनियर लेवल पे जो वर्ल्ड लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा करते हैं एशियन लेवल पे, बट सीनियर लेवल पे किस तरह से वही मेंटेन करके रखें उस पर काम करना होगा. और जैसा आपने दोनों प्लेयर का नाम लिया, निश्चित तौर पर इनसे उम्मीदें होंगी.
और अब बात करते हैं टेनिस की, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल स्पेन के कार्लोस सांचेज जोवर को 6-2, 6-2 से हरा करके जर्मनी में हेगन में चल रहे प्लाज्मैन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं. वहीं सिद्धार्थ बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. डूरंड कप में इम्फाल में आज ग्रुप एफ के एक मुकाबले में तरऊ एफसी और निकोरा एफसी के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ हुआ. वहीं शाम को एक अन्य मुकाबले में इस समय ग्रुप ए में नामधारी एफसी और साउथ यूनाइटेड एफसी आमने सामने हैं. वहीं कल खेले गए दो मुकाबलों में ग्रुप सी के एक मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन आर्मी एफटी को 1-0 से हरा दिया. जीत के साथ ही जमशेदपुर एफसी दो मैचों में 6 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गई है. वहीं ग्रुप ई के एक अन्य मैच में मेघालय की टीम शिलोंग लांजोंग ने रंगदाजीद एफसी को 3-1 से पराजित किया. और श्रोताओं अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, और हमें और हमारी स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.